मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 6 अप्रैल 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं नम्रता भारती, आप संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से हैं, और दूसरे साथी हैं मनोज शर्मा, आप मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। तो नम्रता और मनोज, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, अब हम शुरुआत करते हैं अपने आज के डेली ऑडियो गाइडेंस के सेकेंड स्टेज की, जो है लाइफ मैनेजमेंट का स्टेज। आज मैं आपसे एक अलग मुद्दे पर बात कर रहा हूं, हालांकि वो मुद्दा फिल्मों से ही लिया गया है और आप जानते हैं कि मैं अक्सर फिल्मों से काफी बातें लेता हूं, काफी फिल्में देखने का शौक भी है मुझे भी और मैडम का भी, और शायद मैं इस बात के लिए भी अपराधी ठहराया जाऊं कि मैंने अपने बहुत से नौजवान साथियों को भी कहीं ना कहीं फिल्म देखने की लत सी लगा दी है और मैं लगातार उन्हें इनकरेज करता रहता हूं कि आप सब फिल्में देखिए, लेकिन मैं मित्रों साथ में ये भी कहता हूं कि फिल्मों को देखिए कम और पढ़िए ज्यादा, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिल्में हमें बहुत सारी चीजें सिखाती हैं, बावजूद इसके कि वो बहुत सी चीजें इस तरह की सिखाती हैं जो हमारे जिंदगी में नहीं होती हैं, लेकिन हम बहुत सी ऐसी चीजें पकड़ सकते हैं जो जिंदगी में हो रही हैं और ऐसी चीजों की कल्पना कर सकते हैं जो होनी चाहिए, और वही शायद हमारी लाइफ के लिए सबसे अधिक काम की बातें भी होंगी। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं अभी अभी आई एक नई फिल्म की जिसका नाम है की एंड का। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों में से कितने लोगों ने ये फिल्म देखी होगी, लेकिन यदि नहीं देखी हो तो मैं एक सजेस्ट करूंगा कि यदि संभव हो सके तो एक बार देखने की कोशिश कीजिए। इसलिए नहीं कि इस फिल्म को देख करके आप बड़े खुश होंगे या बड़ी इंटरटेनिंग फिल्म है या बड़ी चौंकाने वाली फिल्म है या मानसिक रूप से आपको या भावनात्मक रूप से यह फिल्म आपको झकझोर कर रख देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिल्म बहुत ही, मैं कहूं कि एक सामान्य स्तर की है। यह भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि फिल्म रियलिस्टिक भी नहीं है, मतलब यथार्थवादी नहीं है, बावजूद इसके कि फिल्म आपको काफी कुछ यथार्थवादी लगेगी। फिल्म तर्कवादी ज्यादा है, तर्कों पर आधारित है, लेकिन जो तर्क है वो इतने जोरदार हैं, इतने प्रबल तर्क हैं कि उनको काट पाना आप और हमारे लिए आसान नहीं होगा, किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। और सच पूछे तो मैं इसीलिए ही कह रहा हूं कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए, खासकर ऐसे स्टूडेंट को तो देखनी ही चाहिए जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जब वो इस फिल्म को देखेंगे तो इस फिल्म में अपने लिए बहुत सारी चीजें वो हासिल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहली बात तो जैसा मैंने कहा दोस्तों कि लॉजिक क्या होता है, तर्क कहां से निकलते हैं, वो आपको इस फिल्म में दिखाई देगी कि सामान्य सी कही जाने वाली बातें हैं, हमारे जीवन के सामान्य सामान्य से व्यवहार होते हैं जो हम रोज एक्शन में ला रहे हैं, लेकिन उनके अर्थ कितने गहरे होते हैं, उनमें जीवन की कितनी गहरी सच्चाइयां छपी छिपी होती हैं, और यहां तक कि हमारा कितना गहरा मनोविज्ञान उनमें दबा हुआ होता है, वह आपको इस फिल्म के कई डायलॉग्स में दिखाई देंगे और कई सीन में भी आपको दिखाई देंगे। तो पहला फायदा, पहले जो लाभ आपको मिलेगा वो यही मिलेगा, समझ लीजिए कि किस तरीके से आप अपने अंदर तर्क क्षमता लाएं। मित्रों, आप एक बात और भी कह सकते हैं कि अभी अभी मैंने कहा कि यह फिल्म तार्किक फिल्म है लेकिन रियलिस्टिक नहीं है। हो सकता है कि आप इन दोनों को अगर जोड़ करके मेरा मूल्यांकन करें तो आप मुझे गलत ठहरा सकते हैं कि सर तो यही कहते हैं कि किसी चीज को तर्क के आधार पर कसो और अगर वो तर्क के आधार पर सही है उसे स्वीकार करो, तो फिर यहां ये क्यों कह रहे हैं कि तार्किक है लेकिन रियलिस्टिक नहीं है। तो आपको थोड़ी सी उल्टी चीज दिखाई देगी, लेकिन मैं इसे स्पष्ट कर दूं कि कभी कभी होता यह है कि जब कोई भी चीज बहुत ही क्रूर तर्कवादी हो जाती है, यानी बहुत ही घोर तार्किक हो जाती है, तो यथार्थ से उसका पीछा छूट जाता है, या कह लीजिए कि यथार्थ से उसका संबंध कहना चाहिए वो टूट जाता है। तार्किक रूप से तो बहुत सही लगती है, लेकिन यथार्थ रूप में उसे लागू करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने कहा कि ये यथार्थवादी फिल्म नहीं है। मित्रों, कहानी कुल मिलाकर के बहुत छोटी सी है, और वो ये है कि जो इसकी नायिका है, जो हीरोइन है, जो करीना कपूर है, वो एक कारपोरेट में नौकरी करती हैं। वो बहुत ही एम्बिशियस महिला हैं और बहुत ऊंचे पद तक पहुंचना चाहती हैं। तो स्वाभाविक है कि ऐसी लड़कियां यही फैसला करती हैं कि वो शादी नहीं करेंगी, क्योंकि फिर वो घर परिवार में उलझ जाएंगी। एक ऐसा लड़का है जो बहुत धनी परिवार का है और वो अपनी मां जैसा बनना चाहता है। वो अपनी मां का बहुत सम्मान करता है और मां का इस रूप में सम्मान करता है, मां को बहुत बड़ा आर्टिस्ट मानता है क्योंकि उन्होंने परिवार संभाला था। अपनी मां के त्याग को वो प्रणाम करता है कि वो रात दिन घर में एक जैसे कि खंभा होता है और खंभे पर पूरा घर टिका होता है, उस तरीके से पूरे घर को संभालती रही। लेकिन उन्हें कहीं रिकॉग्निशन नहीं मिला, ना उन्होंने कहीं नाम की चाहत रखी, ना उनको कहीं नाम दिया गया, ना उनकी कहीं तारीफ की गई, और उन्होंने पूरी जिंदगी इस तरह से त्याग से गुजार दी। तो कहता है कि मैं अपनी मां की तरह बनना चाहता हूं, यानी कि आप कह लीजिए कि वो हाउस मेकर बनना चाहता है। बड़ी विचित्र सी है, यहीं से वो कहानी शुरू होती है और स्थिति आती है कि फिर बहुत अच्छा मैच है, क्योंकि करीना कपूर तो इसलिए शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो घर सोचती है कि घर में मैं उलझ जाऊंगी, जो मेरा हस्बैंड होगा वो तो फिर मुझको रौब मारेगा और मुझे उसी की देखरेख करनी पड़ेगी, और यहां एक ऐसा हस्बैंड मिल रहा है जो घर संभालने को तैयार है, तो इससे अच्छा मैच तो क्या हो सकता था। फलस्वरूप दोनों शादी कर लेते हैं और अब फिल्म शुरू होती है। लेकिन इस बीच में भी आप देखेंगे कि जो महिला और पुरुष के बारे में जो डायलॉग्स हैं बड़े खूबसूरत हैं और बड़े प्रभावशाली हैं, बहुत चौंकाने वाले डायलॉग हैं, और वही उस फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है, समझ लीजिए। दोस्तों, फिल्म आगे बढ़ती है। ये व्यक्ति बहुत, जो अर्जुन कपूर हैं, जो इसके नायक हैं, जिनका नाम कबीर है, का जो नाम है उसका की और का आप जानते हैं, की हमारे यहां ई की जो मात्रा है वो स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, और आ जो है ना पुरुष का लिंग के रूप में प्रयोग होता है, जैसे लड़का तो ये आ है तो ये मेल है, और इसके बाद लड़की ई है, बकरा पुरुष है, और बकरी स्त्री है, तो ई और आ इस रूप में भी हमारे यहां पुरुष और स्त्री के प्रतीक के रूप में चलते हैं व्याकरणिक दृष्टि से। और वैसे भी लड़की का नाम किया है तो उसका पहला शब्द है की, और लड़के का नाम कबीर है तो अंग्रेजी में करेंगे तो के ए होगा तो उसका नाम है का, यानी कि लड़की वर्सेस लड़का, लड़की और लड़का, ये आप हिंदी में अनुवाद कर लीजिए। मित्रों, फिर यह फिल्म आगे बढ़ती चली जाती है। बहुत अच्छे तरीके से यह घर संभालता है और सेकेंड हाफ में फिर चीजें उलटती हैं, क्योंकि लोगों को पता लगता है कि एक ऐसा भी हस्बैंड है जो घर को पूरी तरह से संभाल रहा है, जो लोग बड़े चौकन्ने होते हैं, और फिर मीडिया का उनको अटेंशन मिलने लगता है, फिर ये पॉपुलर होने लगता है, लोग इससे मिलना चाहते हैं, अपने सेमिनार में बुलाते हैं कि ऐसा कौन है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इतना एक तरीके से एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहा है, जो खुद घर संभाल रहा है और अपनी पत्नी को इतना सपोर्ट कर रहा है। फिर इसकी बहुत प्रशंसा होने लगती है, अब महिला को ठेस पहुंचती, जो इसकी पत्नी है ठेस पहुंचती है कि मैं कहां, तो ये मेरे कमाई पर पल रहा है, मेरे कमाई से इसका जीवन चल रहा है, कहां ये मुझसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। अगर आप लोगों ने बहुत पहले एक अभिमान फिल्म देखी हो जो 1970 के आसपास आई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन और जया जी जिस रोल में है, उसमें यही था कि जब जया बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगती है सिंगर के रूप में तो अमिताभ के ईगो को ठेस पहुंचती है, मतलब पति के ईगो को ठेस पहुंचती है। यहां स्थिति बिल्कुल उल्टी है कि अब पत्नी के ईगो को ठेस पहुंच रही है, और फिर से एक जटिल समस्या आती है और बाद में उसका समाधान हो जाता है, जैसे कि हर फिल्म में होता है। ये कुल मिलाकर है कहानी मित्रों। इसमें जो सबसे खूबसूरत चीजें हैं फ्रेंड्स, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा ताकि आप उसी नजरिए से उस फिल्म को देख सकें, या आप लोगों ने ऑलरेडी अगर वो फिल्म देख ली है तो इस नजरिए से अब इस पर आप सोचना थोड़ा सा शुरू कीजिए। सच पूछे तो इस फिल्म का मैसेज यह नहीं है कि पुरुष को सब बाहर के काम धंधे छोड़ करके और किचन संभाल लेना चाहिए। अगर लोग इसे इस रूप में समझते हैं तो मुझे लगता है कि शायद वो फिल्म को सही तरीके से नहीं समझ रहे हैं। इस फिल्म का जो मूल संदेश है, मुझे जो लगता है मित्रों, वो ये है कि समाज को, या स्पेशली कह लीजिए पुरुषों को, जो महिलाओं की जो क्षमता है या महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है, क्षमता की बात हम ना करें, महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसका रिगार्ड करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का कंट्रीब्यूशन क्या है? महिलाओं का कंट्रीब्यूशन रियल सेंस में अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें, बल्कि यहां तक कि आप पूरी दुनिया के संदर्भ में भी आप बात कर सकते हैं, एशिया के संदर्भ में तो खासकर, सबसे बड़ा जो उनका कंट्रीब्यूशन है, दे आर होम मेकर। पूरे घर की देखरेख करती हैं, घर के केंद्र में होती हैं और घर का हर सदस्य उस पर डिपेंडेंट होता है। सुबह नाश्ता से लेकर के खाना पीना, नहाना सोना, सारी चीजों की व्यवस्था वो खुद देखती रहती है। और मजेदार बात है कि बदले में वो सबसे सुनती रहती है, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ, और चक्रघिन्नी की तरह घूमती रहती है। न उसका अपने खाने पीने का कोई वक्त होता है, न उसका अपना कोई स्वाद होता है, कुछ नहीं, जो बचा वही खा रहे हैं, जब टाइम मिला उस समय खा रहे हैं, और सारे घर के सदस्यों के हिसाब से वो अपने को एडजस्ट करती चलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि समाज उनके इस कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करता। पति या सास या ससुर या दूसरे लोग या पूरा का पूरा समाज आप कह लीजिए, महिलाओं को सिर्फ यही कहता है कि तुम आखिर में करती क्या हो, घर में ही तो रहती हो, घर में पड़ी रहती हो, तुम करती क्या हो। मित्रों, हालांकि ये बात फिल्म में नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्री इस बात को कैलकुलेट कर चुके हैं कि महिलाएं जो काम करती हैं, जो घर को संभालती हैं, अगर इनके कंट्रीब्यूशन को इकोनॉमिक टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हमारे जीडीपी का 40% केवल इस कंट्रीब्यूशन से आएगा, 40%। मतलब उस क्षण की कल्पना करके देख लीजिए कि एक घर की महिला बीमार पड़ गई है और पूरा का पूरा घर कैसे अस्त व्यस्त हो गया है, सारी चीजें बिखर गई हैं। तो इनफैक्ट इस फिल्म का जो रियल मैसेज है वो ये है कि जो महिलाओं का जो योगदान है, जो किसी मायने में कम नहीं है, उसे समाज स्वीकार करे, उसका सम्मान करे, उसे एक्सेप्ट करे, तब जाकर के वो कहीं महिलाओं को समान रूप से मान सकेगा, अपने बराबर समझ सकेगा। मैंने जो कहा दोस्तों कि ये रियलिस्टिक फिल्म नहीं है, रियलिस्टिक फिल्म मैंने इसलिए कहा कि ये नहीं है क्योंकि इसमें एक सीन आता है कि जब करीना कपूर को लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं और तब वो बहुत बुरी तरह से बौखला जाती हैं अपने हस्बैंड के ऊपर कि तुमने मेरा कैरियर चौपट कर दिया, अब तो बच्चे पालना पड़ेगा, ये होगा, मेरे कैरियर का क्या होगा। बहुत बुरी तरह से वो पागल सी होने लगती हैं, बौखला जाती हैं, और लकली फिर पता लगता है कि नहीं, वो प्रेग्नेंट नहीं है, यानी कि बच्चों की जरूरत नहीं है। मतलब ये एक ऐसा कपल है हस्बैंड वाइफ का जो अपने बीच में बच्चों को स्वीकार नहीं करता, यानी कि उनका जो जीवन चल रहा है वो बिना बच्चों के ही चल रहा है। और फिल्म के आखिरी दृश्य में आप देखेंगे कि जया बच्चन और अमिताभ बच्चन आए हुए हैं, बिल्कुल इसी नाम से आए हुए हैं, वो भी आपस में फिर इसी को लेकर के थोड़ा सा वाद विवाद करते हैं। तो जया जी कहती हैं कि नहीं, मैंने घर के लिए काम छोड़ा है। तो अमिताभ बच्चन यही कहते हैं कि नहीं, बच्चों के लिए छोड़ा है, तुमने जब बच्चे हुए तो तुमको लगा कि मुझे बच्चों की देखरेख करनी चाहिए, तब तुमने काम छोड़ा है, मेरी वजह से नहीं छोड़ा है। यानी कि अगर बच्चे आ जाते हैं तो वो बच्चों की परवरिश का जो दायित्व तो है वो प्रकृति ने महिलाओं को ही सौंपा हुआ है। इस सच को यह फिल्म किनारे कर देती है क्योंकि यदि करीना कपूर के बच्चे हो जाते और फिर ये कपल किस तरीके से उसको मैनेज करता, वो एक बड़ा खूबसूरत अंश होता अगर उसको फिल्म में ले लिया जाता, और तब डेफिनेटली फिल्म रियलिस्टिक भी बन जाती। लेकिन उसको हटा दिया गया है और इस तरह से फिल्म को एक तरह से हल्का फुल्का मनोरंजक व्यंगात्मक और हास्य तरीके से प्रस्तुत किया गया है। जो चलिए, हर मीडियम की अपनी एक डिमांड होती है और फिल्म मीडियम की ये डिमांड हो सकती है और एक डिमांड थी। लेकिन दोस्तों, फिल्म में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फिलॉसफी डेवलप की गई है वो आखिरी में जो करीना कपूर की मां है वो करीना कपूर को उसकी गलती एक्सेप्ट कराते हुए, क्योंकि उसमें उसके ईगो को हर्ट होता है, तब ये बताती है कि देखो, सवाल पति और पत्नी का नहीं है, सवाल स्त्री और पुरुष का भी नहीं है। इसको ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, सवाल स्त्री और पुरुष का नहीं है, सवाल पति और पत्नी का भी नहीं है कि पति में ईगो ज्यादा होता है या पत्नी में ईगो ज्यादा होता है या स्त्री में कम होता है और पुरुष में ज्यादा होता है, सवाल इसका है ही नहीं है। सवाल सिर्फ इस बात का है कि जो भी कमाता है उसमें ईगो ज्यादा होता है, सीधी सी बात। फिर ये कमाने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि कमाने वाले को लगता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, जो घर में बैठा हुआ है वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रही है, तो ऑटोमेटिकली उसका ईगो बढ़ जाता है और फिर वो सोचता है कि सारी अटेंशन मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो जो घर में बैठा हुआ है या घर में बैठी हुई है उसे अटेंशन क्यों मिल रही है, फिर वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। दोस्तों, ये इस फिल्म की दूसरी सबसे बड़ी फिलॉसफी है। पहला मैसेज जो मैंने आपको बताया कि नारी के कंट्रीब्यूशन को सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, और दूसरा कंट्रीब्यूशन ये कि जो कमाएगा वही अपने को सत्ता युक्त समझेगा, अधिकार संपन्न समझेगा, उसी का ईगो ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठेगा और उसी का ईगो हर्ट होगा। ये दो बातें इसमें कही गई हैं। मित्रों, मैंने अभी जो आप लोगों से बात कही, खासकर जो स्टूडेंट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके संदर्भ में, आप देखेंगे कि आपके सिविल सर्विस की परीक्षा में महिलाओं पर हमेशा 2-3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, और यहां तक कि कभी कभी पूरा का पूरा निबंध भी पूछ लिया जाता है। आप इस फिल्म की चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली ऐसी फिल्म आई है जिसने महिला को इस रूप में पेश किया, महिला की जो समस्या है, नारी की जो स्थिति है, उसको इस रूप में पेश किया है कि एक पुरुष अपने आप को महिला में कन्वर्ट करके और फिर महिला के संदर्भ में बात कह रहा है। उसमें आप इसे कोट कर सकते हैं, चाहे वो जनरल स्टडीज का पेपर हो, चाहे वो आपके निबंध का ही पेपर क्यों न हो। और मित्रों, मैं समझता हूं कि जो मेरे दूसरे भी प्रिय श्रोता हैं वो डेफिनेटली अगर इस फिल्म को देखेंगे तो थोड़ा सा जो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए और जिस तरीके से वो चीजों को संभालती हैं, करती हैं, उनके बारे में एक सकारात्मक सोच उनके अंदर जरूर विकसित हो सकेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मित्रों, लाइफ मैनेजमेंट में आज इतना ही। अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर। मित्रों, कल की जो आकाशवाणी की खबरें हैं उसमें 3 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्टैंडअप योजना की शुरुआत की है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, और सिविल सर्विस के दृष्टि से तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड, आपने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट है उसमें 25 पॉइंट्स की कटौती की है, यह सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट खबर थी वो थी कि बिहार सरकार ने अपने यहां पूरी तरह से शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये 3 इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इन 3 इंपॉर्टेंट खबरों पर हम लोग थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम आते हैं स्टैंड अप योजना पर, जो मैं समझता हूं कि भले ही कल की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हो, लेकिन ये मान करके चलिए कि अभी साल 2 साल तक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जहां तक सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी का सवाल है, क्योंकि ये जो स्टैंड अप योजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। सरकार की जो वित्तीय समावेशन की नीति है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। दोस्तों, न्यूज में आपने कुछ चीजें सुनी कि ये जो स्टैंड अप योजना है ये क्या है। देखिए, नाम में दिया हुआ स्टैंड अप, यानी कि आपको खड़ा करें, कहते हैं ना स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, तो ये खड़े हो जाओ एक सांकेतिक शब्द है। किनको कहा जा रहा है कि खड़े हो जाओ? उनसे कहा जा रहा है कि जो जिनके पैर कमजोर हैं या जो खड़े होने में सक्षम नहीं हैं। और अगर आप इसको आर्थिक स्थिति से जोड़ दें, क्योंकि स्टैंड अप योजना का जो क्षेत्र है वो आर्थिक क्षेत्र ही है, तो आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे यह उनसे जुड़ी हुई योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो खड़े होने की स्थिति में नहीं है। सरकार इस योजना के माध्यम से उन्हें खड़े करने की कोशिश कर रही है। मित्र, जब भी भारत में कमजोर वर्ग की बात होगी तो आपको कुछ उसके डिटेल्स एकदम आपके मुंह पर आ जाएंगे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित वर्ग एवं महिलाएं, ये 4 वर्ग आते हैं जिनको हम एक तरीके से पिछड़े वर्ग उस सेंस में नहीं, बैकवर्ड क्लास में नहीं, लेकिन जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर वर्ग हैं। इसमें मैं दलित वर्ग जो अलग से मैंने शब्द यूज किया, हालांकि ये भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में कवर हो जाते हैं, लेकिन इनके लिए अलग से एक शब्द यूज किया जाने लगा है। मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में भी जो बहुत ही ज्यादा नीचे स्तर के का जीवन जी रहे हैं, आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, उन्हें हम फिर दलित मान लेते हैं। जो सामाजिक रूप से भी तिरस्कृत हैं उनको फिर इसमें शामिल कर लेते हैं। महिलाएं, यह माना जाता है कि महिलाएं भी अभी हमारे समाज में काफी दबी हुई हैं, कुचली हुई हैं, पीछे चल रही हैं। अब सवाल यह है कि इन्हें अब कैसे खड़ा किया जाए, कैसे स्टैंड किया जाए। तो देखिए, अगर आर्थिक रूप से आपको सक्षम बनाना है तो हमारे पास सिर्फ 2 उप तरीके हो सकते हैं। पहला यह है कि या तो इनको रोजगार मुहैया करा दिया जाए, मतलब आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, इनके पास पैसा आए तो या तो हम इन्हें एम्प्लॉयमेंट दे दें या फिर हम इन्हें रोजगार दे दें। नौकरी दे दें या रोजगार दे दें। तो नौकरी देने के लिए तो सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं, और जो मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, आप जानते हैं वो एम्प्लॉयमेंट देने की ही पहल है कि आप कम से कम बेरोजगार तो नहीं रहेंगे, और अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो सरकार की तरफ से उपलब्ध है और ये आपका अधिकार है, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रोजगार गारंटी योजना ये राइट है, ये प्लानिंग नहीं है, योजना नहीं है। दूसरी जो दूसरा जो उपाय हो सकता है कि इनको अपना रोजगार करने के लिए हम सुविधाएं उपलब्ध कराएं कि ये अपना रोजगार खुद कर सके। स्टैंड अप योजना का संबंध रोजगार खुद किए जाने से है। न्यूज में आपने सुना कि उसमें दिया हुआ है कि अब प्रत्येक बैंक से ये कहा गया है कि वो साल में अपने यहां से दो लोगों को स्टैंड अप योजना के तहत ऋण दें। दो लोगों को, ये दो लोग कौन होंगे? ये दो लोग वही होंगे जिनके हमने अभी चर्चा की, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, दलित वर्ग और महिलाएं। इनमें से कोई भी दो लोग होंगे, कम से कम ये आपका कोटा है, दो लोगों को आपको ऋण उपलब्ध कराना पड़ेगा, और वो जो ऋण होगा वो 10 लाख रुपए तक का उन्हें ऋण दिया जाएगा। बट नेचुरल है मित्रों कि इस ऋण पर ब्याज नहीं के बराबर होगा। जब उन्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे तो फिर वो 10 लाख रुपए का उपयोग अपने रोजगार के लिए करेंगे। अब क्या रोजगार करेंगे, किस तरीके का करेंगे, अब उसके लिए एक अलग से योजना होगी, कैसे वो प्लान करेंगे, कैसे बैंक उसका निर्धारण करेगा, वो एक अलग मुद्दा है। और इसी से जुड़ा हुआ आप देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट शुरू कर रही है ताकि वो अपना रोजगार करने लायक बन सके। यानी कि ये रोजगार मांगने वाले लोग नहीं होंगे बल्कि दूसरों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले लोग होंगे। और ये सोचा गया है कि इस तरीके से साल भर में 2.5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। ये टोटल मिलाकर के स्टैंड अप योजना है। अब आप देखिए मित्रों कि इस स्टैंड अप योजना को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूं ताकि आपकी जो सोच है इसे अलग थलग एक टॉपिक के रूप में ना लेकर के बल्कि दूसरे अन्य टॉपिक से भी जोड़कर देख सके। पिछले कुछ सालों से आप लगातार फाइनेंशियल इंक्लूजन की चर्चा सुन रहे हैं, जिसे हम हिंदी में वित्तीय समावेशन कहते हैं, वित्तीय समावेशन। इस पर पिछले साल 2015 में प्री में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वित्तीय समावेशन का क्या अर्थ है, प्री का क्वेश्चन था। सिंपल सी बात है कि वित्तीय समावेशन का मतलब है कि ये जो फाइनेंस, याद रखिए इकोनॉमी नहीं फाइनेंस, थोड़ा सा अंतर समझिएगा, फाइनेंस मतलब धन, इसमें शामिल करना, यानी कि ये जो कमजोर वर्ग है जिसकी हम लोगों ने अभी चर्चा की, इस कमजोर वर्ग के सामने दो सबसे बड़े संकट है। पहला तो यह है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां तक इनकी पहुंच नहीं है, मतलब बैंकों में शाखाएं नहीं है, सुविधाएं नहीं है, ये है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है। दूसरा इनकी सबसे बड़ा संकट यह है कि इनके पास अपना कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। मान लीजिए कि बैंक अगर इनको ऋण भी देना चाहे तो बैंक उस ऋण की वापसी की गारंटी चाहेगा, और ये खुद में इतने गरीब हैं, ना इनके पास जमीन है, ना मकान है, ना घोड़ा गाड़ी, ना जानवर है, तो किस बिना पर ये उनको कर्ज दे दे, यानी कि उनको कर्ज के वापस की गारंटी ही कुछ नहीं है। यानी कि फिर न तो इनके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तक पहुंच है और ना कुछ ऐसे साधन है जिसको आधार मानकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इनको पैसा दे सके, अगर कोई पहुंच भी गया तो। यानी कि फिर ये इनको कहीं कर्ज मिल ही नहीं सकता। तो जो वित्तीय समावेशन है, वित्तीय समावेशन कुल मिलाकर यह है कि समाज का वह वर्ग जो अभी तक इस तरह की सुविधाओं से वंचित है, किस तरीके से उन लोगों को इस मेन स्ट्रीम में लाया जाए या इस तरह की सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाए, इसे हम कहते हैं वित्तीय समावेशन। अब आप प्रधानमंत्री जनधन योजना को देखिए कि प्रधानमंत्री जनधन योजना बेसिकली क्या है। प्रधानमंत्री जनधन योजना और कुछ नहीं है, यही है कि उन लोगों के खाते खोले जाएं, बैंकों में खाते खोले जाएं, और खाते खोलने का तरीके कितने आसान कर दिए गए हैं, मतलब उसमें चक्कर नहीं, ताकि वो कम से कम खाता, बैंक अकाउंट को ऑपरेट करना तो सीखें, यहां से लर्निंग उनकी शुरू हो रही है, बैंक जाने की आदत तो पड़े, बैंकों में काम करना वो थोड़ा सा ट्रेंड हो सके। तो जनधन योजना भी वित्तीय समावेशन का ही अंग है। इसी तरह से आपने एक और सुना होगा मुद्रा बैंक। यह मुद्रा बैंक क्या है? मुद्रा बैंक का भी पर्पस यही है कि लोगों को जो बहुत कम से कम ब्याज की दर पर उनको ऋण उपलब्ध कराया जाए। मुद्रा बैंक की तो कोई ब्रांच ही नहीं होगी। मुद्रा बैंक एक तरह से मोबाइल पर चलने वाला बैंक है, केवल मोबाइल फोन से चलने वाला बैंक है, यानी कि अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं है। तो मुद्रा बैंक के जरिए आप पूरे देश के गांव गांव तक पहुंच गए हैं, बस वहां मोबाइल की पहुंच होनी चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, यानी कि हर जगह पर बैंक खुल चुके हैं। इसका भी पर्पज यही है। मुद्रा बैंक में भी देखेंगे कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो उनको किस तरीके से सस्ते ऋण की दर पर उनको आर्थिक सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो ये जो चाहे स्टैंड अप योजना हो फ्रेंड्स, चाहे वो मुद्रा बैंक की मैंने बात बताई, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, ध्यान रखिए कि ये सारे के सारे वित्तीय समावेशन के ही अंग हैं। और चूंकि जो वित्तीय समावेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे देश की योजनाओं का, खासकर अर्थशास्त्र की योजनाओं का, इसलिए इस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसमें कोई भी आप ढिलाई मत दीजिए, और जितनी इस तरह की योजनाएं हैं इन पर आपको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करने के लिए पेजेस रख लेने चाहिए अपने रजिस्टर में, ताकि उसे आप लगातार अपडेट करते रहें। क्योंकि न्यूज में आपने सुना है, जब स्टैंड अप योजना की न्यूज थी, प्रधानमंत्री ने हमारे वित्त मंत्री जी ने बताया है कि जनधन योजना के अंतर्गत अब तक कितने खाते खोले जा चुके हैं, वो भी एक वित्तीय समावेशन का अंग है। मित्रों, दूसरी रेपो रेट के बारे में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेपो रेट पर आज अखबारों में काफी लिखा हुआ है। देखिए, रेपो रेट के बारे में कई बार, चूंकि हर दो महीने में मौद्रिक नीति की समीक्षा होती है, मैं हर दो महीने में इस पर कुछ न कुछ चर्चा करता ही हूं, इसलिए चर्चा करना जरूरी नहीं समझ रहा हूं। केवल एक छोटा सा उल्लेख कर दूं कि रेपो रेट बेसिकली वह बैंक की वह दर है, रिजर्व बैंक की वह दर है जिस रेट पर वह दूसरे बैंकों को कर्ज देती है। दूसरे बैंक, चूंकि जो दूसरे बैंक हैं, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, ये रिजर्व बैंक से कर्ज लेती हैं और उस कर्ज को फिर वो दूसरों को कर्ज के रूप में देती हैं। तो रिजर्व बैंक इनसे एक ब्याज लेता है पैसा देने के बदले में, तो उस ब्याज की दर को रेपो दर कहते हैं, जो अब 6.5% 6.5% के दर से वो दूसरे बैंकों को ब्याज पर पैसा देती है। अब दूसरे बैंक उसे 8 पर देते हैं, 9 पर देते हैं, 10 पर देते हैं, वो उनके ऊपर है। और वही जो बचता है, जो बैंक जो ऋण जो ब्याज की दर में जो अंतर है, वही उनका प्रॉफिट होता है। और रिवर्स रेपो दर जो है वो बिल्कुल उसके उल्टा चलता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि किसी बैंक ने रिजर्व बैंक से का पैसा ले लिया है, लेकिन वो आगे कर्ज देने की स्थिति में नहीं है, तो बैंक ये समझते हैं कि भाई ये पैसा हम अपने पास क्यों रखें, अगर पैसा अपने पास रखेंगे तो बेकार में इस पर ब्याज देना पड़ेगा, तो उस पैसे को रिजर्व बैंक को लौटा देते हैं। तो जब रिजर्व बैंक को लौटाते हैं तो रिजर्व बैंक इस लौटे हुए पैसे के पर ब्याज देती है, लेकिन उतना नहीं देती जितना उसने शुरू में उनसे लिया था, उस पर थोड़ा सा कम देती है, उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। जैसे 6.5% पर वो दे रही है तो वापस लेने में वो 6% पर देगी, यानी कि कम से कम आप लेते समय सतर्क रहे, नहीं तो पता लगा कि जब मर्जी है जितना भी लिया और फिर लौटाते रहे, तो 0.5% का वो भी अंतर रखती है, ये रेपो दर और रिवर्स रेपो दर है। अमित, तो तीसरी जो खबर थी वो बिहार सरकार ने शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, पहले देशी शराब पर प्रतिबंध लगाया गया था, अब विदेशी शराब पर भी, मतलब पूरी तरह से शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसको लेकर के अब डेफिनेटली थोड़ी सी चर्चाएं होंगी, बहस भी होंगे, वाद विवाद भी होंगे, क्योंकि शराब पर प्रतिबंध लगाए जाने का मुद्दा हमेशा किसी न किसी स्टेट में हमेशा चलता रहा है। हरियाणा सरकार ने बहुत पहले किया था, फिर वापस ले लिया, आंध्र प्रदेश सरकार ने भी किया, फिर वहां वापस ले लिया, कुछ राज्यों में अभी भी ये लागू है, गुजरात में तो बहुत लंबे समय से लागू है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है शायद मिजोरम और नागालैंड भी में भी शराब प्रतिबंधित है, छत्तीसगढ़ में भी शायद कुछ समय शराब पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात चली थी, लेकिन वो फिर नहीं लगाया, वापस ले लिया गया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक मामला है। और मुझे लगता है मित्रों की शराब पर जो प्रतिबंध लगाने का जो मुद्दा है वो बहुत ही बड़ा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दा है, क्योंकि ये जो नीचे का वर्ग है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जिसमें खासकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को हम लेते हैं, तो वहां शराब पीना उनके एक तरह से दैनिक जीवन का हिस्सा है, वो सांस्कृतिक हिस्सा भी उनके जीवन का है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये जो वर्ग है आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा जो अक्षम होता है शराब के कारण ही होता है, जो ज्यादातर बर्बादियां होती हैं, क्योंकि मैं तो गांव में रहा हूं, इन लोगों के बीच में रहा हूं, इन लोगों को मैंने देखा है कि अगर मुझे लगता है कि सच में किसी भी तरीके से इन्हें शराब से छुटकारा दिलाया जा सके, तो ये सब के सब आर्थिक रूप से ऑटोमेटिक ही अच्छे हो जाएंगे। शराब पी करके पड़े हुए हैं, काम पर नहीं जा रहे हैं, उसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं, फिर उसके इलाज पर पैसा खराब हो रहा है, घर में मारपीट हो रही है, घर की संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं, शराब की लत पड़ गई है, बहुत ज्यादा बर्बादी इसके कारण हो रही है। नो डाउट कि अगर शराब को आप प्रतिबंधित करते हैं तो शराब को सरकार को इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू का लॉस होता है, क्योंकि शराब के ठेके नीलाम होते हैं और उससे सरकार को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष यह है कि शराब पीने के कारण जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उन समस्याओं को निपटाना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो पब्लिक हेल्थ सेंटर पर जाएंगे तो सरकार उनके इलाज पर पैसा खर्च कर रही है, उनकी वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो रही है तो वहां भी सरकार इन्वॉल्व है। तो सच पूछिए तो ये स्टडी में भी पाया गया है कि सरकारों को इसके बदले में शराब के ठेके की नीलामी से जो रेवेन्यू मिलता है उससे ज्यादा रेवेन्यू इससे जो उत्पन्न समस्याएं हैं उस पर खर्च करना पड़ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये फायदे का सौदा नहीं है। लेकिन मित्रों, इसके साथ और भी दूसरी चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर एक राज्य में कर दिया गया है लेकिन बगल के राज्य में शराब पर प्रतिबंध नहीं है तो वहां से उसकी ब्लैक मार्केटिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो पहले इनको अपने राज्य में सस्ते में शराब मिल जाती थी, अब जो आदतन पीने जिनको पीने की लत पड़ गई है अब वो महंगी शराब पी रहे हैं, क्योंकि अब जो ब्लैक मार्केटिंग के तहत उनको वो शराब महंगी मिल रही है तो उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। तो इस तरीके से दूसरे बहुत व्यावहारिक संकटें उसमें संकट आते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए दो काम एक साथ किए जाने चाहिए कि सरकार एक तरफ ये प्रतिबंध लगा रही है, अब दूसरी तरफ जनचेतना पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को बताएं कि कैसे शराब नुकसानदेह है। और सच पूछे तो भारत में जो महिला वर्ग है इस शराब के सबसे ज्यादा खिलाफ है। महिलाओं ने इसको लेकर के बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, धरने दिए हैं शराब के खिलाफ। और क्योंकि सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित वही होते हैं, घर की आर्थिक स्थिति संभालने की जिम्मेदारी उन पर है, वो तड़पती रहती, सबसे ज्यादा मारपीट उन्हीं के साथ होती है, महिलाओं के साथ होते, शराब पी करके आ रहे हो और अपना पुरुषत्व दिखा रहे हैं, उनको वही जगह मिलती है अपना पुरुषत्व दिखाने की, गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इसलिए विरोध भी महिलाएं करती है। तो मतलब आधी आबादी का सपोर्ट तो समाज को है कि शराब के खिलाफ खड़े हैं, अब जो आधे बचे हुए हैं इनमें बड़े आराम से चेतना पैदा की जा सकती है और इस तरीके से इस बुराई से छुटकारा पाया जा सकता है। और अगर हमारा देश इस बुराई से छुटकारा पा जाए तो आर्थिक व्यवस्था बहुत कुछ बेहतर हो सकती है। तो मित्रों, ये AIR न्यूज के बारे में थी। जहां तक न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं कुछ न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें खासकर जो पनामा पेपर्स हैं उससे रिलेटेड हैं, जो शराबबंदी की मैंने बिहार में बात की उससे भी रिलेटेड क्लिपिंग्स हैं, रिजर्व बैंक के जो रेपो दर है उस पर भी कुछ एडिटोरियल कमेंट्स हैं, ये आप लोग देख लेंगे, उन पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब जितने भी मित्रों ने ईमेल लिखे हैं उन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, विजय कुमार दुबे वाराणसी से, अभिनव सिंह भोपाल से, हरिओम तिवारी, नफीस अहमद, मोंटू शर्मा, पीयूष त्रिपाठी, रंजीत रंजन कोलकाता से, हिमांशु अग्रवाल, सिमरन सिन्हा, मनीष झा, नम्रता भारती गोरखपुर से, कपिल चारण जोधपुर से और जितेंद्र कुमार गया बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त होता है। इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।